नमस्कार, मैं वेद प्रकाश शर्मा कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले विषय अपठित बोध को लेकर के प्रस्तुत हूँ। यह प्रश्न पत्र में कक्षा 9 में दो प्रकार का होता है, एक अपठित गद्यांश और एक होता है अपठित पद्यांश। तो सर्वप्रथम मैं अपठित गद्यांश के बारे में बात करूँगा। अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित इसका अर्थ होता है जो न पढ़ा गया हो, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त। जिस गद्यांश का पूर्व अध्ययन न किया गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में से नहीं पूछा जाता। इसका अभ्यास करने से विद्यार्थी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। इसके लिए भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों का होना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य में रुचि जागृत करने, बौद्धिक क्षमता के विकास तथा विषय ग्रहण की क्षमता के विकास हेतु अपठित गद्यांश विषय आपके पाठ्यक्रम में लाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आप लोगों के सामने अपठित गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर कैसे छांटे जाएं, इसके बारे में संक्षिप्त से बता देना चाहता हूं। सर्वप्रथम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से गद्यांश का मूल भाव समझ में आ जाता है। प्रश्न पढ़ने के उपरांत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर छांटिए। शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध और भाषिक विशेषताओं आदि से संबंधित इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। सटीक उत्तर हेतु अपठित गद्यांश को गहराई से समझना अति आवश्यक है। अर्थात यदि आप सटीक उत्तर देना चाहते हैं, यदि आप एकदम सही उत्तर देना चाहते हैं, तो आपको अपठित गद्यांश का भाव समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में आप प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व बहुत अच्छी तरह से गहराई से अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए और सटीक उत्तर देने के लिए शीर्षक निर्धारण एवं प्रश्नों के उत्तर देते समय सटीकता, सरलता तथा संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद उपरांत पुनः गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा संभावित उत्तर को रेखांकित कर दें। प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, प्रश्नों के उत्तर एकदम सही होने चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक गद्यांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गद्यांश का पाठन करूँगा। लक्ष्य प्राप्ति में यह आवश्यक है कि आप अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करें। दूसरों के सहारे बैठने वाले कभी सफल नहीं होते। आजकल के नौजवान सदा दूसरों का मुंह ताका करते हैं या समय और भाग्य को कोसा करते हैं। उचित अवसर की तलाश व्यक्ति को करनी पड़ती है, फिर अपने विवेक, संयम और परिश्रम से दृढ़ संकल्प हो आगे बढ़े तो लक्ष्य स्वयं ही आपकी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग तो सदा ही समाज और समय से नाराज रहते हैं। वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की आड़ में अपने आलस्य को ओढ़े रहते हैं। छात्रावस्था में व्यावहारिकता का अभाव अक्सर देखा जाता है। ऐसे में अनुभवशील व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने में समझदारी है। तो यह अपठित गद्यांश है जिसका मैंने अच्छे से पाठन किया है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हैं ये देखिए। प्रश्न नंबर एक है जो कि 2 अंक का है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अब हम इसको जो है गद्यांश में पढ़ेंगे। सबसे पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, लक्ष्य प्राप्ति में यह आवश्यक है कि आप अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करें। तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करें। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, आजकल के युवकों की क्या विशेषता है। तो आजकल के युवकों की क्या विशेषता है, ये प्रश्न है 2 नंबर और ये 2 अंक का है। तो इसका उत्तर आ जाता है, आजकल के नौजवान सदा दूसरों का मुंह ताका करते हैं या समय या भाग्य को कोसा करते हैं। गद्यांश की 2री और 3री लाइन में इसका उत्तर है। तो इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ, आजकल के युवकों की विशेषता यह है कि आप आजकल के युवक सदा दूसरों का मुंह ताका करते हैं या समय और भाग्य को कोसा करते हैं। यह प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। तो गद्यांश में लिखा हुआ है, गद्यांश में लिखा हुआ है, अपने विवेक संयम और दृढ़ परिश्रम से दृढ़ संकल्प हो, आगे बढ़े तो लक्ष्य स्वयं ही आपकी ओर बढ़ेगा। अर्थात इस पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए विवेक संयम और परिश्रम आदि गुणों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है, छात्रावस्था में छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप जब ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे तो अंतिम गद्यांश के अंत में लिखा हुआ है, छात्रावस्था में व्यावहारिकता का अभाव अक्सर देखा जाता है, ऐसे में अनुभवशील व्यक्तियों के अनुभवों को का लाभ उठाकर आगे बढ़ने में समझदारी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, छात्रावस्था में व्यावहारिकता का अभाव अक्सर देखा जाता है। अर्थात छात्रावस्था में जो विद्यार्थी हैं उतने व्यावहारिक नहीं होते हैं और वे दूसरों के अनुभवों का लाभ लेने में संकोच करते हैं, लेकिन अंतिम वाक्य में क्या लिखा हुआ है, ऐसे में अनुभवशील व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने में समझदारी है। तो इसका अर्थ है कि जो प्रश्न नंबर 4 है, घा है, इसका उत्तर हुआ, अनुभवशील व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठा करके आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात यदि हम अनुभवशील व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाएंगे तो अवश्य ही हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। तो यह था प्रश्न नंबर घा का उत्तर। अब प्रश्न नंबर गा, शारीरिक शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो मूल शब्द इसमें है शरीर, यद्यपि इसमें मूल शब्द अलग नहीं मांगा गया है, लेकिन जब प्रत्यय अलग करेंगे तो मूल शब्द अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो शरीर इसमें मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है। इस प्रकार आपके 5ों प्रश्नों के उत्तर मैंने इस गद्यांश से छांटे हैं, आपको जो है इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।